एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एलेक्स माइकलाइड्स के पहले उपन्यास द साइलेंट पेशेंट पर एक गहरी, मतलब काफी डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं।
हाँ, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसने आते ही, मेरा मतलब है 2019 में, काफी धूम मचाई थी।
बिल्कुल, न्यूयॉर्क टाइम्स का नंबर वन बेस्ट सेलर, गुडरीड्स चॉइस अवार्ड विनर, इस जॉनर में तो जैसे एक मील का पत्थर बन गया ये।
सही कहा। और इसकी कहानी वो आपको एकदम पकड़ लेती है शुरुआत से ही।
हाँ, और लेखक भी दिलचस्प हैं। एलेक्स माइकलाइड्स, ब्रिटिश साइप्रियोट बैकग्राउंड, स्क्रीन राइटिंग का अनुभव और ग्रीक माइथोलॉजी और साइकोथेरेपी में खास रुचि,
और ये सब, मतलब ये सारे एलिमेंट्स उनकी लिखाई में साफ नजर आते हैं, खासकर इस नॉवल में।
तो आज हम कोशिश करेंगे कि कहानी की तह तक जाएं, किरदारों के मन की यात्रा को समझें और वो थीम्स डिस्कस करें जो इसे इतना खास बनाती हैं।
और हाँ, वो चौंकाने वाला मोड़, उस पर तो बात करनी ही होगी, और लेखक के स्टाइल पर भी।
तो कहानी शुरू होती है एक दहला देने वाली घटना से।
बिल्कुल, एलिसिया बेरनसन एक बहुत कामयाब मशहूर पेंटर, वो अपने पति गैब्रियल, जो खुद एक जाना माना फैशन फोटोग्राफर है, उसके चेहरे पर 5 गोलियां मार देती है और फिर बिल्कुल खामोश,
एकदम पत्थर की तरह, एक शब्द भी नहीं।
यही यही उपन्यास का सेंट्रल मिस्ट्री है
जी।
एलिसिया को फिर मानसिक रूप से अस्थिर मानकर नॉर्थ लंदन के एक सिक्योर साइकेट्रिक यूनिट द ग्रूव में भेज दिया जाता है।
और सवाल वहीं का वहीं रह जाता है, आखिर क्यों? एक सफल आर्टिस्ट, दिखने में खुशहाल शादी, फिर ये, और ये चुप्पी, क्या राज है इसके पीछे?
और इसी राज को खोलने का, या कहें सुलझाने का बीड़ा उठाता है थियो फेबर। वो एक फोरेंसिक साइकोथेरेपिस्ट है।
अच्छा।
और वो एलिसिया के केस से इतना, कह सकते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाता है कि खास तौर पे द ग्रूव में नौकरी लेता है
सिर्फ एलिसिया के लिए।
हाँ, उसका मकसद ही यही है कि एलिसिया का इलाज करे, उसकी खामोशी तोड़े और सच सच बाहर लाए।
इस नॉवल का स्ट्रक्चर भी काफी इंटरेस्टिंग है ना? दो टाइमलाइंस में चलती है कहानी।
हाँ, एक तो प्रेजेंट, जहाँ थ्यू एलिसिया से बात करने की, उसे समझने की कोशिश कर रहा है,
और दूसरी
है पास्ट, जो एलिसिया की पर्सनल डायरी के जरिए सामने आती है। उसमें मर्डर तक पहुंचने वाली सारी घटनाएं हैं।
ये पाठक को जैसे एक पजल में उलझा देता है। अच्छा, किरदारों पर आते हैं। सबसे पहले तो एलिसिया बेरनसन।
हाँ, वो कहानी का केंद्र बिंदु है, रहस्यमयी। मर्डर से पहले एक वाइब्रेंट सक्सेसफुल आर्टिस्ट,
और बाद में
एक मूक मरीज। उसकी यात्रा हमें दूसरों के नजरिए से और उसकी डायरी और पेंटिंग से पता चलती है,
खासकर वो उसकी आखिरी पेंटिंग अल्सिस्टस। हाँ, अल्सिस्टस, वो ग्रीक मिथ वाला पात्र जो पति के लिए जान देकर लौटती है तो खामोश रहती है। एलिसिया कहीं ना कहीं खुद को उसमें देख रही थी।
बिल्कुल, उसकी खामोशी सिर्फ बीमारी का लक्षण नहीं है, वो गहरे सदमे, धोखे और भयानक मानसिक पीड़ा का नतीजा है, शायद एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म भी।
और फिर है थियो फेबर, हमारा नैरेटर, कहानी सुनाने वाला।
हाँ, और शुरुआत में तो वो बड़ा ही समर्पित, हमदर्द डॉक्टर लगता है, जैसे वो सच में एलिसिया की मदद करना चाहता है। पाठक उस पर भरोसा करने लगता है।
लेकिन यही पर राइटर का वो कमाल का डिवाइस आता है, अनरिलायबल नैरेटर।
बिल्कुल सही, एक ऐसा नैरेटर जिस पर आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि थियो की अपनी जिंदगी भी तो उलझी हुई है।
हाँ, उसकी पत्नी का धोखा और उसके बचपन का ट्रॉमा, पिता का वायलेंस, ये सब कहीं ना कहीं उसे एलिसिया की तरफ खींचता है। पर क्या वो सिर्फ हमदर्दी है
या कुछ और? उसका सफर एक हीलर से कहानी के सबसे अप्रत्याशित विलन तक का है, और ये राज आखिर तक छुपा रहता है।
अच्छा, और गैब्रियल बेरनसन, एलिसिया का पति और शिकार?
शुरू में तो एलिसिया की डायरी में वो एकदम आइडियल पति लगता है।
हाँ।
प्यार करने वाला, आकर्षक,
लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आती है।
हाँ, धोखेबाज, सेल्फ ऑब्सेस्ड, उसकी बेवफाई कहानी का एक अहम मोड़ बनती है।
और थियो की पत्नी कैथी, हालांकि उसका रोल छोटा है, पर उसकी बेवफाई, वो भी गैब्रियल के साथ।
वही तो, वो कड़ी है जो अनजाने में थियो को एलिसिया की जिंदगी से जोड़ देती है, उसके थेरेपिस्ट बनने से भी पहले। सब कुछ जैसे जुड़ा हुआ है।
तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? थियो द ग्रूव पहुंच गया।
हाँ, और वो एलिसिया के साथ थेरेपी सेशंस शुरू करता है, लेकिन वो सिर्फ क्लिनिक में बात नहीं करता, वो एक जासूस की तरह एलिसिया के अतीत में जाता है।
मतलब?
वो एलिसिया से जुड़े हर इंसान से मिलता है, उसकी आर्ट गैलरी का मालिक, गैब्रियल का भाई, एलिसिया का कजिन।
अच्छा, जानकारी इकट्ठा करने के लिए?
बिल्कुल, उससे एलिसिया के बचपन के ट्रॉमा के बारे में पता चलता है, पिता की क्रूरता, माँ की मौत और गैब्रियल की बेवफाई की अफवाहें भी।
और वो नगाब पोश आदमी वाली बात?
हाँ, कि एलिसिया को लगता था कोई उसका पीछा कर रहा है,
जिसे सब उसका वहम मानते थे।
इसी बीच हमें एलिसिया की डायरी के हिस्से मिलते हैं, उसका प्यार, उसका डर और फिर पति पर शक, जो धीरे धीरे यकीन में बदलता है।
और थियो इस जानकारी का इस्तेमाल थेरेपी में करता है ना, बड़ी चालाकी से।
हाँ, वो एलिसिया को उकसाता है, गैब्रियल के धोखे की बात करता है, शायद ये सोचकर कि इससे वो टूटकर बोलेगी।
और क्या, वो बोलती है,
वो रिएक्ट करती है और थियो में भरोसा करने लगती है, इतनी कि वो उसे अपनी डायरी दे देती है, कहती है सच जान लो।
पर क्या ये वाकई मदद थी? यही शक होता है।
और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो पाठक को एकदम हिला देता है।
क्या होता है?
थियो डायरी का आखिरी सबसे डरावना हिस्सा पड़ता है। एलिसिया लिखती है कि मर्डर वाली रात एक नकाबपोश आदमी उनके घर में घुसा था।
ओ, तो वो वहम नहीं था?
नहीं, उसने एलिसिया को बांध दिया और गैब्रियल का इंतजार किया। गैब्रियल आया तो उसने उसे बंदूक दिखाई और कहा कि गैब्रियल का उसकी यानी घुसपैठिए की पत्नी के साथ अफेयर है।
बाप रे।
फिर उसने गैब्रियल को चॉइस दी बंदूक की नोक पर, तुम्हारी जान या तुम्हारी पत्नी की।
और गैब्रियल ने?
गैब्रियल ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं खुद को चुनता हूँ, उसे मार डालो।
हे भगवान, ये तो एलिसिया के लिए तो ये मरने जैसा ही होगा।
बिल्कुल, पति का ये विश्वासघात। लेकिन घुसपैठिया गोली नहीं चलाता, वो बस उनकी शादी को तबाह करके एलिसिया को पूरी तरह तोड़कर चला जाता है।
तो फिर गोली किसने चलाई?
एलिसिया ने, गैब्रियल के उन शब्दों से पूरी तरह टूटकर, भावनात्मक रूप से मरकर उसने गोली चलाई।
ओह, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना, असली झटका तो बाकी है।
हाँ, थियो डायरी में ये सब पढ़ते हुए लिखता है कि उसे एक अजीब सी जानी पहचानी घबराहट हुई।
क्यों?
क्योंकि वो नकाबपोश आदमी वो थियो ही था।
क्या? वो गैब्रियल का अफेयर थियो की पत्नी कैथी के साथ था। थियो महीनों पहले गैब्रियल से मिला था, उसे मारने नहीं बल्कि उसे डराने धमकाने, ताकि वो कैथी से दूर रहे।
उसे ये अंदाजा नहीं था कि,
उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एलिसिया अपने पति को मार देगी।
तो थियो का पूरा थेरेपी का नाटक, वो सब
एक ढोंग था। वो एलिसिया की मदद नहीं कर रहा था, वो खुद को बचा रहा था। वो ये पक्का कर रहा था कि एलिसिया का राज, मतलब उसका खुद का राज, कभी बाहर ना आए।
ये तो बहुत ही भयानक है, मदद के नाम पर इतना बड़ा धोखा।
बिल्कुल, ये थेरेपी के सिद्धांतों का भरोसे का सबसे बड़ा उल्लंघन है, जिसे साइकोलॉजी में शायद प्रोजेक्शन का एक बहुत ही डार्क रूप कह सकते हैं। वो अपना दर्द, अपना गुस्सा एलिसिया पर प्रोजेक्ट कर रहा था।
और अंत में क्या होता है?
अंत में थियो को डायरी में लिखी एक ताजा लाइन से पता चलता है कि एलिसिया शायद उसे पहचान गई है।
तो वो घबरा जाता है।
हाँ, और वो उसे ड्रग्स का ओवरडोज दे देता है, इसे सुसाइड दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन
एलिसिया मरने से पहले वो डायरी अपनी एक साथी मरीज को दे चुकी होती है।
अच्छा,
वो डायरी पुलिस तक पहुंचती है और उसमें आखिर में थियो का नाम होता है।
तो एलिसिया की लिखी हुई आवाज वो उसकी मौत के बाद भी सच सामने ले आती है।
बिल्कुल, थियो पकड़ा जाता है और विडंबना देखिए, अंत में वो खुद उसी साइकियाट्रिक फैसिलिटी में एक मरीज बनकर कैद हो जाता है।
वाह, क्या कहानी है। इसमें कई गहरे विषय हैं, एक तो ये खामोशी और आवाज का।
हाँ, एलिसिया की चुप्पी एक प्रोटेक्शन है, एक मिस्ट्री है, पर उसकी असली ताकत उसकी लिखी हुई आवाज में निकलती है।
और दूसरा, ये कथा और सत्य की अविश्वसनीयता। थियो की कहानी पर हम भरोसा करते हैं और फिर
धोखा खाते हैं। ये सिखाता है कि सच हमेशा सीधा नहीं होता, बताने वाले के इरादे मायने रखते हैं।
बचपन के सदमे का असर भी बहुत बड़ा थीम है।
हाँ, थियो और एलिसिया दोनों अपने अतीत से जूझ रहे हैं। ये दिखाता है कि बचपन के घाव कैसे जिंदगी भर असर डाल सकते हैं, जैसे कोई पुरानी चोट जो बार बार दर्द देती है।
विश्वासघात तो जैसे कहानी की रग रग में है, पति पत्नी का, डॉक्टर मरीज का।
हाँ, और ये थेरेपी के एथिक्स पर भी सवाल खड़े करता है, पावर का मिसयूज कैसे हो सकता है।
लेखक की स्टाइल की बात करें तो वो दोहरी कथा संरचना कमाल की है।
बिल्कुल, थियो का फर्स्ट पर्सन नरेटिव और एलिसिया की डायरी, पाठक को दोनों के दिमाग में झांकने का मौका मिलता है।
और अनरिलायबल नरेटर का इस्तेमाल तो बेहतरीन है।
हाँ,
मिकलाइड्स ने हमें थियो पर यकीन दिलाया
और फिर जैसे पैरों तले जमीन खिसका दी, वो झटका बहुत असरदार है।
प्रतीकवाद भी बहुत अच्छा है, खासकर वो अल्सेस्टिस वाला मिथक।
हाँ, वो एलिसिया के किरदार को और कहानी को एक अलग ही गहराई देता है कि कैसे वो खुद को उस पात्र से जोड़ती है जो पति के धोखे के बाद खामोश हो गई।
और फोर शैडोइंग, दोबारा पढ़ने पर लगता है अरे हाँ, ये संकेत तो था थियो की बातों में, उसके व्यवहार में।
बिल्कुल, ये लेखक की क्राफ्ट दिखाता है।
इस नॉवल का जो भावनात्मक असर है वो शायद सबसे ज्यादा इसके ट्विस्ट में है। पाठक भी ठगा हुआ महसूस करता है।
हाँ, वो शॉक वैल्यू बहुत हाई है। ये उन किताबों में से है जो दिमाग में घूमती रहती है पढ़ने के बाद भी।
शॉक के अलावा एलिजिया के लिए गहरी उदासी और सहानुभूति भी रह जाती हैं। वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है।
सही कहा, और ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम वाकई किसी को जानते हैं? क्या चेहरों के पीछे इतना अंधेरा हो सकता है?
और क्या हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन सकते हैं? ये कथा कहने की कला पर भी सोचने को मजबूर करती है।
अंत में ये कहानी शायद यही याद दिलाती है कि जो सतह पर दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता।
और ये कि आवाज खामोशी में भी मिल सकती है और सच सबसे अप्रत्याशित जगहों से भी सामने आ सकता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।